नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। निकोलस कार की द शैलोज, व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन्स, डिजिटल युग में ध्यान, पढ़ने और स्मृति पर केंद्रित विचार प्रधान गैर कथा पुस्तक है। यह कार के चर्चित प्रश्न, क्या गूगल हमें मूर्ख बना रहा है, का विस्तृत रूप है। पुस्तक का मुख्य तर्क यह नहीं है कि इंटरनेट बेकार है, बल्कि यह है कि हर माध्यम उपयोगकर्ता की मानसिक आदतों को आकार देता है। इंटरनेट की गति, लिंक, सूचनाएं, खोज और लगातार बदलती सामग्री मन को तेजी से जानकारी छांटने के लिए प्रशिक्षित करती है। कार के अनुसार यही प्रशिक्षण लंबे समय तक एकाग्र रहने, जटिल तर्क का अनुसरण करने और गहरे पठन की क्षमता पर दबाव डाल सकता है। अपने निजी अनुभव से शुरुआत करके वे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, लेखन और मुद्रण के इतिहास, कंप्यूटरों के विकास तथा इंटरनेट की व्यावसायिक संरचना को जोड़ते हैं। पुस्तक तकनीक विरोधी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि सुविधा के साथ आने वाली संज्ञानात्मक कीमत की जांच है। इसका उद्देश्य पाठक को माध्यम की शक्ति और अपनी डिजिटल आदतों दोनों पर अधिक सजगता से विचार करने के लिए प्रेरित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, माध्यम स्वयं सोचने की आदत बदलता है। कार का आधारभूत विचार मार्शल मैक्लुहन के कथन माध्यम ही संदेश है से जुड़ा है। उनका कहना है कि किसी तकनीक के प्रभाव को केवल उसके भीतर मौजूद सामग्री से नहीं समझा जा सकता। प्रश्न यह भी है कि उस तकनीक का नियमित उपयोग ध्यान देने, निर्णय लेने और जानकारी ग्रहण करने की कौन सी आदतें बनाता है। इंटरनेट एक साथ खोज इंजन, संचार माध्यम, पुस्तकालय, मनोरंजन मंच और बाजार है, इसलिए उसका अनुभव लगातार विकल्पों, संकेतों और व्यवधानों से भरा रहता है। उपयोगकर्ता केवल पढ़ नहीं रहा होता, वह अगला लिंक चुन रहा होता है, संदेशों की संभावना पर नजर रख रहा होता है और अनेक स्रोतों के बीच दिशा बदल रहा होता है। कार इसे निष्क्रिय परिस्थिति नहीं मानते, मस्तिष्क अनुभव के अनुसार अपने तंत्रिका संबंधों को ढालता है। जिस मानसिक अभ्यास को बार बार दोहराया जाता है, वह अधिक सहज बन सकता है। यदि डिजिटल वातावरण तेजी, प्रतिक्रिया और सतही छंटाई को पुरस्कृत करता है, तो मन उसी दिशा में अभ्यस्त हो सकता है। कार का तर्क यह नहीं कि इंटरनेट ज्ञान नष्ट कर देता है, उसकी शक्ति विशाल सूचना तक पहुंच में है। पर वे चेतावनी देते हैं कि पहुंच और समझ एक ही बात नहीं है। व्यापकता उपयोगी है, किंतु विचार की गहराई के लिए धीमे, अविच्छिन्न और उद्देश्यपूर्ण ध्यान की भी जरूरत होती है। दूसरा, न्यूरोप्लास्टिसिटी से गहरे पठन की चुनौती। पुस्तक में न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि मस्तिष्क जीवन भर अनुभवों और अभ्यासों के असर से बदल सकता है। कार इस अवधारणा का प्रयोग यह समझाने में करते हैं कि डिजिटल व्यवहार केवल बाहरी दिनचर्या नहीं, मानसिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकता है। वे विशेष रूप से गहरे पठन पर ध्यान देते हैं। गहरा पठन वह स्थिति है जिसमें पाठक लंबे तर्क, कथा, सूक्ष्म भाषा और विरोधी विचारों के साथ पर्याप्त देर तक बना रहता है। इसमें कल्पना, व्याख्या, स्मृति और आत्मचिंतन साथ काम करते हैं। वेब पर पढ़ना अक्सर अलग मांगे रखता है। स्क्रीन पर उपलब्ध लिंक, विज्ञापन, नेविगेशन और नए संकेत पाठक से बार बार निर्णय कराते हैं। हर छोटा निर्णय कार्यशील स्मृति का हिस्सा लेता है। जब कार्यशील स्मृति संकेतों और बदलावों में व्यस्त रहती है, तो पाठ के अर्थ को जोड़ने और उसे दीर्घकालिक स्मृति में व्यवस्थित करने के लिए कम संसाधन बच सकते हैं। कार का बिंदु यह नहीं कि हर स्क्रीन पठन अनिवार्यतः उथला है या मुद्रित पुस्तक अपने आप समझ पैदा करती है। असली प्रश्न उस ध्यान की गुणवत्ता है जिसे माध्यम प्रोत्साहित करता है। उनकी चिंता है कि जब त्वरित स्कैनिंग प्रमुख आदत बन जाए, तो धैर्य मांगने वाले पाठ और विचार कठिन लगने लगते हैं। इसीलिए वे पठन को केवल सूचना लेने की क्रिया नहीं, मन को प्रशिक्षित करने वाला अभ्यास मानते हैं। तीसरा, हाइपरलिंक, बहुकर्म और कार्यशील स्मृति का बोझ। कार इंटरनेट की संरचना में मौजूद हाइपरलिंक और बहुकर्म को संज्ञानात्मक लागत के स्रोतों के रूप में देखते हैं। हाइपरलिंक उपयोगी है क्योंकि वे संदर्भ, स्रोत और संबंधित ज्ञान तक तुरंत पहुंच देते हैं। लेकिन मुख्य पाठ पढ़ते समय प्रत्येक लिंक एक छोटा निर्णय भी पैदा करता है। क्या इसे अभी खोलना चाहिए, बाद में देखना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए? अनेक विकल्पों के बीच यह निर्णय प्रक्रिया ध्यान को पाठ की सतत धारा से हटाती है। कार के अनुसार यह विघटन जटिल सामग्री को मन में एकीकृत करने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। इसी तरह बहुकर्म अक्सर दक्षता जैसा महसूस होता है, पर मानसिक रूप से वह कामों के बीच तेजी से स्विच करना है। संदेश, ईमेल, समाचार और सामाजिक अद्यतन के बीच बदलने पर मन को हर बार नया संदर्भ ग्रहण करना पड़ता है। इस संदर्भ परिवर्तन की कीमत समझ, स्मरण और त्रुटि नियंत्रण में चुकानी पड़ सकती है। इंटरनेट के डिजाइन में तात्कालिकता का आकर्षण भी है क्योंकि नया संकेत ध्यान खींचता है। कार इस आकर्षण को मानवीय कमजोरी भर नहीं मानते, बल्कि माध्यम और व्यवसाय मॉडल से जुड़ी संरचनात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं। उनका विश्लेषण यह पूछता है कि सुविधा बढ़ाने वाले विकल्प कब सोचने की निरंतरता तोड़ने लगते हैं। समाधान केवल लिंक हटाना नहीं, बल्कि अलग उद्देश्यों के लिए अलग पठन परिस्थितियां बनाना है। चौथा, लेखन से मुद्रण तक तकनीक और चेतना का इतिहास। द शैलोज की एक विशिष्ट विशेषता इसका लंबा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। कार इंटरनेट को मानव इतिहास में अचानक आई बिल्कुल अलग घटना की तरह नहीं रखते। वे लेखन, मानचित्र, घड़ी, मुद्रण प्रेस और कंप्यूटर जैसी बौद्धिक तकनीकों के उदाहरणों से दिखाते हैं कि औजारों ने लंबे समय से सोचने और समाज को व्यवस्थित करने के तरीके बदले हैं। लेखन ने स्मृति पर निर्भरता और ज्ञान के संचरण को बदला। मुद्रण ने पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाई तथा व्यक्तिगत, शांत और क्रमिक पठन को व्यापक बनाया। घड़ी ने समय को अधिक मापनीय और अनुशासित रूप में देखने में योगदान दिया। इस इतिहास का उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं कि हर नई तकनीक हानिकारक है। उल्टे, कार स्वीकार करते हैं कि तकनीक मानवीय क्षमताओं का विस्तार करती है। मुद्रण ने ज्ञान के प्रसार और आधुनिक बौद्धिक जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई, किंतु लाभ के साथ आदतों का पुनर्गठन भी हुआ। इसी आधार पर वे इंटरनेट को तटस्थ पात्र मानने से इनकार करते हैं। किसी उपकरण के कार्य और उसके उपयोग से बनने वाली मानसिक प्रवृत्तियां अलग नहीं की जा सकती। इतिहास यह भी सिखाता है कि प्रारंभ में अदृश्य लगने वाले माध्यम प्रभाव समय के साथ सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कार इस दृष्टि से इंटरनेट की आलोचना को पुरानी तकनीक के प्रति नॉस्टैल्जिया नहीं, बल्कि वर्तमान परिवर्तन की जांच के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंत में, गूगल की क्लिक अर्थव्यवस्था और ध्यान का व्यवसायीकरण। कार गूगल को केवल एक उपयोगी खोज सेवा के रूप में नहीं, बल्कि उस इंटरनेट अर्थव्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखते हैं जिसमें उपयोगकर्ता का ध्यान महत्वपूर्ण संसाधन है। खोज की गति, परिणामों की प्रचुरता और एक क्लिक से दूसरे पृष्ठ तक जाने की सहजता ज्ञान प्राप्ति को अत्यंत सुविधाजनक बनाती है। फिर भी विज्ञापन आधारित डिजिटल सेवाओं के लिए अधिक समय, अधिक पृष्ठ दृश्य और अधिक सहभागिता आर्थिक मूल्य रखते हैं। इस संरचना में उपयोगकर्ता को लंबे समय तक एक ही विचार के साथ रुकने देने की अपेक्षा उसे सक्रिय, प्रतिक्रियाशील और आगे बढ़ते रहने देना लाभकारी हो सकता है। कार का तर्क गूगल के उपयोग को गलत ठहराना नहीं है। वे स्वयं इंटरनेट की शोध क्षमता और उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। उनका प्रश्न यह है कि क्या सूचना को कंप्यूटर की तरह संग्रहित और तुरंत पुनः प्राप्त करने की आदत मानव स्मृति और समझ की भूमिका को कम करके देखती है। मानव ज्ञान केवल तथ्य खोज लेने का नाम नहीं, अर्थ बनाने के लिए जानकारी को ध्यान, स्मृति, पूर्व अनुभव और चिंतन के साथ जोड़ना पड़ता है। इसलिए पुस्तक डिजिटल मंचों की डिजाइन और व्यापारिक प्रोत्साहनों को निजी आत्मनियंत्रण से अलग नहीं करती। यदि वातावरण निरंतर क्लिक और प्रतिक्रिया के लिए बना है तो व्यक्ति की एकाग्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी कठिन हो जाती है। यह विश्लेषण आज के स्मार्टफोन और सामाजिक माध्यमों पर विचार करने के लिए भी उपयोगी आधार देता है। निष्कर्ष में, द शैलोज उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो महसूस करते हैं कि ऑनलाइन रहने के बाद लंबी पुस्तक, विस्तृत लेख या जटिल कार्य पर टिके रहना कठिन हुआ है। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, लेखक, ज्ञानकर्मी और मीडिया या शिक्षा के शोधार्थी इसमें ध्यान, पठन और डिजिटल डिजाइन के संबंध पर विचारोत्तेजक ढांचा पाएंगे। यह पुस्तक इंटरनेट छोड़ देने की व्यावहारिक या सरल सलाह नहीं देती। इसका अधिक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह सुविधा, गति और सूचना की प्रचुरता को स्वतः बौद्धिक प्रगति मानने की धारणा पर प्रश्न उठाती है। कार की स्थिति इसी कारण समान विषय की सामान्य डिजिटल आलोचनाओं से अलग है। वे केवल स्मार्टफोन, सामाजिक माध्यम या खराब ऑनलाइन आदतों की शिकायत नहीं करते। वे मस्तिष्क की अनुकूलनशीलता, पठन के इतिहास, कंप्यूटर संस्कृति और ध्यान आधारित व्यवसाय मॉडल को एक ही तर्क में जोड़ते हैं। इस व्यापकता से पाठक समझ सकता है कि समस्या केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि उस वातावरण की भी है जिसमें ध्यान लगातार खंडित होता है। साथ ही पुस्तक के निष्कर्षों को अंतिम वैज्ञानिक निर्णय मानने के बजाय बहस का गंभीर आरंभ मानना उचित है। कुछ आलोचकों ने इसके प्रमाणों की सीमा और तकनीक के संभावित संज्ञानात्मक लाभों पर कम ध्यान देने की बात कही है। फिर भी इसका स्थायी मूल्य प्रश्न की स्पष्टता में है। यह पाठक को डिजिटल साधनों का अधिक जानबूझकर उपयोग करने, निर्बाध पठन के लिए समय बचाने और सूचना पाने तथा उसे समझने के अंतर को पहचानने में मदद करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं निकोलस कार, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।